لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ ہاں بھائی کوئی طرح کیا کھا لینا چاہیے نا بھلے تو بھلے مدمے کی بیماری آتی ہے پہنچی ہوئی ہو رسول اللہ لینے میں تو فائدہ ہے نا کیونکہ بابا نے بتایا ہوا ہے کیا بتایا ہوا ہے کیا بتایا ہے پیر ملے تو دودھ کو تو دے لینا چاہیے تو ڈاکٹر لوگ اسی لیے کیا صلاح دیں گے دنیا بھی ڈاکٹر کیا صلاح دیں گے نہیں لینا چاہیے صحت کا ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ ہر نیم ہر جگہ لاگو نہیں ہوتا ہے ایسی بھی غلطی نہیں کرنی ہے ویکتی دیکھا جاتا ہے سمے دیکھا جاتا ہے ماحول دیکھا جاتا ہے پھر کسی نیم کو فالو کیا جاتا ہے ایک دم سیٹ ہو کر کے بابا کی مرلی کو بابا کی سیمت کو فالو نہیں کرنا چاہیے بابا کے اور بھی مہاواقیہ ہیں ان کو دیکھنا ہے سچ ہے پتی کا ضرور دھیان رکھنا ہے اپنی استھتی کا دھیان رکھنا ہے اپنے میں شکتی اتنی ہے نہیں جب شکتی ہی نہیں ہے آتما میں سکھ بھوگنے کی تو سکھ کہاں سے بھوگ لیں گے رزلٹ کیا ہوگا ترنت آپ داخل کرانا پڑے گا اور ہو سکتا ہے شریف شریف چھوٹ جائے
چھبیس سے چوراسی کی کا ہیڈنگ دیا ہے میٹھی بچے اب اس سیچی دنیا کو آگ لگنی ہے اس لیے شریر سہت جسے تم میرا میرا کہتے ہو اسے بھول جانا ہے اس سے دل نہیں لگانی پہلے کیس کے انت میں تم جو میرا میرا کہتے ہو یہ سب بھول جانا ہے کیونکہ پھر کسی دنیا کو آگ لگنی ہے باپ کہتے ہیں میٹھے میٹھے بچوں میں تمہارے لیے سور کی استھاپنا کر رہا ہوں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو چیز کے لیے روتے ہیں بھوکے لگ جاتے ہیں یہی چیز چاہیے تو ماں باپ اس سے اچھی چیز اس سے اچھی سندر چیز سامنے رکھ دیتے ہیں یہ بابا بھی سور کی استھاپنا کر رہا ہوں تمہارے لیے وہاں تم ہی جا کر کے رہیں گے تم ہی نئی سور کی دنیا ہے تمہیں تم ہی جا کر کے رہیں گے جو دکھدائی آتمائیں ہیں آسری آتمائیں ہیں وہ وہاں نہیں رہیں گی جو تمہیں اس دنیا سے نفرت آ جائے جیسے اس دنیا سے نفرت آ جائے ابھی تمہارا منہ اس طرف ہے منہ اس طرف ہے بدھی اس طرف ہے باپ کو گھر کو اور سرف کو یاد کرنا تین کو یاد کرنے کی بات ہے جو باپ ہے وہ پرماتما کا گھر بھی ہے کیونکہ باپ کا مقرر رتھ اور اس کے بچے وہ سب جیتے جی سورگ میں جانے والے ہیں جیسے یدھیشٹھر کا گائن ہے جو یدھ میں اس سے رہتے ہیں تو باپ کا تن باپ کا گھر بھی ہے اور سکھمئی اسٹیج میں رہتا ہے اس لیے سورگ بھی ہے ایسے نہیں کہ تین چیزوں کو الگ الگ یاد کرنا ہے نہیں وہ باپ بھی ہے باپ کا گھر بھی ہے اور سورگ بھی ہے دوسرا پھر تم کو دکھ دھام سے نفرت آتی ہے. تین دھام بتائے, دکھ دھام کے بعد آنے والا سکھ دھام, اور سکھ دکھ کا یہ دنیا میں کھیل ہے. سکھ کے بعد دکھ کا کھیل بجانے کے بعد شانتی دھام میں جانا ہوتا. دکھ جھیلتے جھیلتے آتمائیں تھک جاتی ہیں تو شانت میں جا کر رہتی ہیں. ابھی ان شریروں سے پارٹ بجاتے بجاتے اس دنیا سے نفرت آ گئی. تو اب شادی کرنے کی بھی کیا درکار ہے؟ شادی کرنے سے پھر دل لگ جاتی ہے. اس سے آتما سے شادی کرنے کے بعد آتما سے دل نہیں لگ جاتی, کس سے دل لگ جاتی؟ شریر سے پھر دل لگ جاتی ہے. باپ کہتے ہیں کہ پرانی جوتیوں سے اب کچھ بھی منہ نہیں رکھو. یس, دوابر سے لے کے کلی کے انت تک 63 جنموں میں کتنی پرانی جوتیاں دھارن کی ہوں گی بھارت ورش میں؟ استری کو جوتی کہا جاتا ہے. ایک جوتی گئی, پرانی جوتی گئی, دوسری نئی لیتے ہیں, چار چار شادیاں بھی کر لیتے ہیں. جوتی بابا اس لیے بولا ہے کہ شریر سے نفرت آ جائے, لگاؤ نہ رہ جائے. ویسے جوتی تو پاؤں کو سکھ دینے کے لیے ہوتی ہے, بابا کی تو بے حد کی باتیں ہیں. بدھ روپی پاؤں میں کسی پرکار کے کانٹوں کا دکھ نہ لگنے پائے, اس کے لیے جوتی ہوتی ہے. استری پرس کی پہلی رچنا ہے کے لیے. تو باپ کہتے ہیں ان 63 جنموں میں تم نے کتنی جوتیاں دھارن کی. اب سات جوتیاں تو خدائی ہو گئی, ان سے کچھ بھی اسنے نہیں رکھو, کیونکہ آج شادی کی کل مر جاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ ودھوا بن جاتی ہے. پھر اور سے دل لگاتی ہے, گندی بن پڑتی ہے. جو بھی کلیوگ کے انت میں چھٹی بن گئی ہے, وکاروں کی ہور لگی پڑی ہے, ایسی دنیا میں کنیا ماتائیں تو وہ منزل والی ہوتی ہیں, ان کو جیسا ماحول ملتا ہے اس کا مقابلہ نہ کر پانے کے کارن لوگ لاج کی لگ جاتے, بس کہیں کہیں دل لگ جاتی ہے, گندی بن پڑتی ہے. یہ ہے ہی ویشال, سب پتت ہی پتت ہیں. یہ راون راجیہ ہے نا, تو یہاں کوئی سے بھی دل نہیں لگانی. رام راجیہ میں راون راجیہ میں کیا فرق بتایا؟ شاستروں میں بھی فرق بتایا. رام کے لیے وشیش کیا کہیں گے؟ مریادا پرشوتم. کس بات کی مریادا پرشوتم؟ کس بات کی مریادا میں انہوں نے اپنے کو باندھ کے رکھا تھا؟ میری تو ایک, دوسری نے کوئی, ایک میں اپنی بدھی کو باندھ کر کے رکھا تھا, اسی کو شاستروں میں ایک الگ بھی کہہ دیا ہے. ایک آتما سے اس نے, اب وہ شاستکار کو جانتے نہیں کہ واسطہ میں یہ سنگم کی باتیں ہیں, अभी तो एक परमात्मा बाप से ही दिल लगानी है, उसे को ही लव करना है। दुनिया में तो रावण राज्य है, रावण राज्य माना मंदोदरी को किससे प्यार था? रावण से प्यार था। भले उसे समझाते थे सीता को छोड़ दो, ये अच्छा काम नहीं है, फिर भी सहयोग किसको देती थी? रावण को ही सहयोग देती थी। अब रावण के तो 10 सिर हैं, 10 सिर मन अनेक मतों का संगठन, वही रावण कहा जाता है। कोई ने कुछ समझाया तो मान लिया, कोई ने कुछ समझाया तो मान लिया, दूसरे ने कुछ समझाया, तीसरे ने कुछ समझाया, चौथे ने कुछ समझाया, सबसे प्रभावित हो गई कौन? मंदोदरी। तो ये रावण राज्य है, यथा राजा तथा प्रजा। तो यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगाना सिवाय एक बाप के। पाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं। पाप और पाप और पुण्य जहाँ पाप है वहाँ पाप कहाँ से आएगा? पाप तो पुण्य की दुनिया स्थापन करता है, पाप की दुनिया तो बनाता ही नहीं। पाप की दुनिया पाप ही बनाते हैं। जिनके लिए गीता में लिखा है मूढ़ा जन्मने जन्मने, नरक योनि में जाकर के गिरते हैं, द्वापर से आकर के जन्म लेते हैं, द्वैत फैलाते हैं, एक से बुद्धियों को तोड़वाए देते हैं, तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे, और याद करते रहेंगे दूसरों दूसरों को तो पाप कटेंगे नहीं और ही जाते बढ़ते जाएंगे। पाप बढ़ते जाएंगे फिर सजाएं बहुत कड़ी, और जितनी जाते सजाएं खावेंगे उतना ही पद भ्रष्ट होता जाएगा। कौन सा पद? श्री 108 जगत गुरु शंकराचार्य जी कहा जाता है, वो तो अपने ऊपर टाइटल रखा है लेते हैं जगत गुरु, भले सारे भारत देश की भी आत्मा उनको न माने, वास्तव में ये जगत गुरु का टाइटल तो सुप्रीम सोल बाप का है, जो इस धरती पर आता है तो 108 श्रेष्ठ आत्माओं का चयन करता है। वो 108 श्रेष्ठ आत्मा है सारे संसार के बीच में कयामत के समय में चमकती है बड़े बड़े सितारों के रूप में, ये है धरती के चैतन्य सितारे। लेकिन उनकी नंबरवार माला बनती है चैतन्य मणकों की, कुछ लेफ्ट के रूप में पार्ट बजाते हैं, कुछ राइटियस के रूप में पार्ट बजाते हैं, लेकिन बाप के सहयोगी सब बनते हैं, सब नंबरवार। लेकिन नियम क्या बताया अभी कि जो जितनी सजाएं खाते हैं उतना ही उनका माला का मणका नीचे गिर जाता है। वो तो है फर्स्ट क्लास, बाप की यूनिवर्सिटी के फर्स्ट क्लास मणके, फिर सेकंड क्लास भी होंगे, सेकंड क्लास है 16,108। जो शरीर में 16,108 नसें नाड़ियां मानी जाती है, काला खून बहाने वाली और शुद्ध खून बहाने वाली, बाप की तो बेहद की बात है। मन के अंदर भी दो प्रकार के संकल्प चलते हैं, शुद्ध खून और अशुद्ध खून। ये संकल्पों का खून है, ये खून बहाने वाली नसें नाड़ियां जो चैतन्य है वो भी 16,108 है, लेकिन सब नंबरवार पद पाने वाली संसार के सामने आप प्रत्यक्ष होने वाली है। तो बोला कि अगर सजाएं खाते जावेंगे तो पद भी भ्रष्ट होता जाएगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा माना आत्मा का मन का नीचे उतरता जाएगा। तो क्यों नहीं इसे कलयुगी बंधन को छोड़ दो? कौन से बंधन को छोड़ दो? जिन जिन अनेक आत्माओं के बंधन में आत्मा फंस पड़ी, तो उन अनेकों के बंधन को छोड़कर क्या करे? एक के सुख के संबंध में अपने को बांध दे। बाबा सबके लिए बेहद की बात समझाते हैं, ऐसे नहीं किसी एक को छोड़ देते हैं। एक कोई ऐसा आर्डिनरी आत्मा बन गई हो कि प्रजापिता को छोड़ देते हैं, कि जगदम्बा को छोड़ देते हैं, या वैष्णवी देवी को छोड़ देते हैं, या कोई और अच्छे अच्छे बच्चों को अष्टरत्नों में से छोड़ देते हैं, उनकी बात छोड़ देते हो, ऐसे नहीं कि और दूसरों की बात करते हो। नहीं, ये बाबा के नियम सब बच्चों के लिए एक जैसे हैं। बेहद की बात समझाते हैं, सन्यासी जब थे तो दुनिया इतनी गंदी नहीं थी। कब थे सन्यासी? जब थे तब थे, घर घाट छोड़ जाते थे, महल माणिया अटारियां छोड़ जाते थे, बड़े बड़े महल छोड़ करके राजा जंगल में चले जाते थे, तब सन्यासी थे। और अब तो बड़े बड़े एरोप्लेन है उनके पास, बड़ी बड़ी महल माणिया अटारियां है उनके पास। महेश योगी ने जबलपुर के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति की एक बिल्डिंग बनाई है। कही किसकी जाएगी? जिसने बनाई है उसी की कही जाएगी। तो सन्यासी जब थे वास्तव में तो दुनिया इतनी गंदी नहीं थी। अभी तो ये सन्यासी नहीं है, साधु नहीं है, साधना करने वाले इंद्रियों को साधने वाले नहीं है, ये तो सवाधु है। वास्तव में जब सन्यासी थे तो दुनिया इतनी गंदी नहीं थी, सत्व प्रधान आत्माएं थी। जंगल में रहते थे तो सबको उनकी प्योरिटी की आकर्षण होती थी। मनुष्य वहां जाकर के उनको वहीं पर खाना पहुंचा करके आ जाते थे, उनको शहरों में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती थी और निडर होकर के रहते थे। ऐसे नहीं कि शेर चीता खा जाएगा जंगल में, नहीं, जो योगी होगा उसके वाइब्रेशन इतने तीक्ष्ण होते हैं कि मनुष्यों की भी बुद्धि चेंज हो जाती है। अशांत मनुष्य आत्मा उनके संग के रंग से शांत हो जाती है, दुष्ट संकल्प शांत हो जाते हैं। तो जानवरों में तो बुद्धि और ही कम होती है, जानवरों की बुद्धि के वाइब्रेशन तो कंट्रोल करना और ही सहज है, तो निडर होकर के रहते। तुमको भी निडर बनना है, अभी इतनी योग बल की पावर आई नहीं है कि तुम निडर बन गए हो, लेकिन बनना है। कब बनना है? एक स्टेज होती है, आत्मा जब स्थिर हो जाती है तो किसी का डर नहीं रहता। कम से कम 8 घंटे याद की यात्रा बताई, 24 घंटे में चलते फिरते उठते बैठते टोटल मिलाकर के 8 घंटे जो यात्रा में अपनी पूर्ण आहुति दे देगा तो उसकी ऐसी स्थिति बनेगी। सन्यासी उस समय निडर होकर के रहते थे, तुमको भी निडर बनना है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसमें निडर बनने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती, हम बेहद के बाप के बच्चे बन गए, अब हम सुखधाम का वर्षा लेते हैं, दुख की हमको अनुभूति नहीं होनी चाहिए। बाप के पास आते हैं तो बच्चों को बहुत फखुर रहता है, हम बेहद के बाप से सुखधाम का वर्षा लेते हैं, बच्चों को बहुत खुशी रहती है। यहाँ तो इस दुनिया में कितना दुख है, कैसी कैसी गंदी गंदी बीमारियां आदि होती रहती हैं, गंदी बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि गंदे से गंदे कर्म करते हैं तो गंदी से गंदी बीमारियां होती रहती हैं। बाप तो गारंटी करते हैं, तुमको वहां ले जाते हैं जहां कुछ भी बीमारी आदि नहीं होगी। बीमारियों की दुनिया ही खिलाफ, न डॉक्टर होंगे, न हॉस्पिटल होंगे, न दवाएं होंगी। अभी तो दुनिया की क्या हालत लगी पड़ी है, मर्ज बढ़ता गया जीव जीव दवा की, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, डॉक्टर तो बढ़ते जा रहे हैं और बीमारियां भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती। जितनी जाती दवाई नई 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 ईजाद कर पाते हैं उससे ज्यादा चौगुनी बीमारियां बढ़ती चली जा रही, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही। इसलिए बाबा ने बोला कि जब विनाश का डंका बजेगा तो न डॉक्टर रहेंगे, न हॉस्पिटल रहेंगे, न केमिस्ट की दुकानें रहेंगी, सब खलास हो जाएंगे। एक बाप की याद ही आखिरी सहारा रह जाएगा। तो यहाँ इस दुनिया में देखो कितना दुख है, वहां तो बीमारी आदि नहीं होती है। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं, आधा कल्प माना चार युगों की चतुर्युग कहते हैं एक कल्प, और चार युगों में से दो पहले युग सत्ययुग त्रेता वो हुआ आधा कल्प, और द्वापर कलयुग हुआ दूसरा आधा कल्प। पहले आधा कल्प में है सुख की दुनिया और दूसरे आधा कल्प में है दुख की दुनिया, राम राज्य और रावण राज्य। तो बाप बताते हैं आधा कल्प के लिए मैं तुमको हेल्दी बनाता हूँ, आधा कल्प के लिए मैं तुमको हेल्दी बनाकर जाता हूँ। किस बिना पर? क्या तरीका बताया? एक बाप दूसरा न कोई, द्वैत नहीं आ सकता। और दुखी कौन बनाता है फिर द्वापर से? जब दो दो धर्म, दो दो मतें, दो दो राज्य, दो से चार, चार से आठ, देशों की संख्या बढ़ती जाती है, राजाओं की संख्या बढ़ती जाती है, धर्मों की संख्या बढ़ती जाती है, आज से 2500 वर्ष पूर्व माने इस्लाम धर्म स्थापन होने से पूर्व कोई धर्म नहीं था। सारी दुनिया में एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी, एक ही कुल था, एक ही मत था, एक ही लक्ष्मी नारायण या राम सीता का राज्य था, तो सब सुखी थे। तो आधा कल्प के लिए तुम इतने हेल्दी बन जाते हो। यहां अगर कोई से भी दिल लगाई तो बहुत ही सजाएं खानी पड़ेंगी। टीचर को भी पढ़ाना है, सुधारना है। पढ़ाई किस लिए पढ़ाते हैं? जो खामियां हो उसे सुधर जाए। तुम समझा सकते हो, वो लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस, कौन लोग कहते हैं? हैं? तुम नहीं कहते हो 3 मिनट साइलेंस, कौन लोग कहते हैं? वह लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस, ट्रैफिक कंट्रोल करो। और तुम्हारा, तुम्हारे लिए पाप क्या कहते हैं? श्वासों श्वास निरंतर याद करो। ऐसे नहीं जब दुख पड़ा, जब भीड़ पड़ी तब प्रैक्टिस करना शुरू किया। बोलो, सिर्फ 3 मिनट की साइलेंस से क्या होगा? ये भी बाप को ही याद करना है, जितने भी कर्म विनाश हो। साइलेंस का वरदान देने वाला तो बाप है, उनको याद करने बिगर शांति मिलेगी कैसे? 3 मिनट के लिए कौन कहते हैं? बोलो, आपने किसके लिए सुना? तो कौन कहते हैं कि 3 मिनट साइलेंस में बैठो? हैं? दीदी दादी, बाप ने उनको दूर कर दिया, वह कहते हैं। तुम नहीं कहते उस सन्मुख की बैठे हुए, वह कहते हैं 3 मिनट साइलेंस। और तुमको बाप ने बताया है श्वासों श्वास निरंतर याद करो। ان کو یاد کرنے بغیر شانتی ملے گی نہیں. کن کو یاد کرنے بغیر؟ ان کو یاد کرنے بغیر. دور کیوں کر دیا؟ برہما کے تن میں ہی سپریم سول بیٹھا بول رہا تھا. تو ان کو کہنا چاہیے, ان کو کیوں کہا؟ واستو میں برہما کا جو پارٹ تھا وہ پرماتما پارٹ. اس نرک کی دنیا کا وناش کر کے واپس جاتا ہے. اس لیے برہما کی مندروں میں پوجا نہیں ہوتی, مورتیاں نہیں ہوتی, مندر نہیں بنتے. یہ دادا لیس راج کی بات ہے. ویسے تو بابا کہتے ہیں کہ ماتائیں سورگ کا دوار کھولتی ہیں, اور سب سے بڑی سے بڑی ماں کس کو بتایا؟ برہم ماں. تو برہما تو سب سے بڑی ماں ہے. پھر یہ ویرودھاباس کہاں سے آ گیا؟ ماں بڑی ماں, یہ راج پریوار میں ماتا کا پد اونچا تو ہوتا ہے سب سے جاتی, لیکن داڑھی مونچھ والی ماں نہیں ہونی چاہیے. کیسی ہونی چاہیے؟ پریکٹیکل روپ ہونا چاہیے. بھارت ورش میں جگدمبا کی پوجا ہوتی ہے, داڑھی مونچھ والے برہما کی پوجا نہیں ہوتی ہے. اس کا تاتپری ہوا کہ وہی برہما دادا لیس راج کی سول 69 میں شریر چھوڑنے کے بعد کوئی براہمن بچی میں پرویش کرتی ہے, اور پرویش کر کے جگدمبا کا پاٹ بجاتی ہے. اس لیے مرلی میں بولا ہوا ہے کیا, یہ برہما تمہاری بڑی ماں ہے, جگدمبا ہے. واستو میں یہ برہما ہی جگدمبا ہے. کیسے؟ وہی دادا لیس راج کی سول, وہی کرشن کی سول جب کوئی برہمن بچی میں پرویش کرتی ہے تو جگدمبا کا پاٹ بجاتی ہے. اس جگدمبا کے دوارا ہی, اس برہما کے دوارا ہی سورگ کا گیٹ کھلتا ہے. پرشوں کو یہ ادھیکار نہیں دیا کیا کہ وہ سورگ کا دوار کھول سکیں؟ ماتائیں کنیائیں ہی اس کے لیے یوگی ہیں جو سورگ کا دوار ادگھاٹن کرنے کے نمت بن سکتی ہیں. تو بتایا, تو اس باپ کو یاد کرنے بغیر شانتی نہیں ملے گی, ان کو ہی یاد کر رہے ہیں. تو ان کو کہہ کے دور کیوں کیا؟ اس لیے کہا کہ وہ جگدمبا اور جگت پتا کا پارٹ بھوشیہ میں بجنے والا ہے. 69 سے پہلے کی یہ وانی چلائی ہوئی ہے. تو اشارہ کیا کہ جن جگدمبا اور جگت پتا کی پوجا بھارت ورش میں ہوتی چلی آئی ہے, وہ پیورٹی کو اپنانے والے ماں تو پتا آگے بھوشیہ میں جا کر کے پرتکش ہوں گے. ان کو یاد کریں گے تب ہی تو ور ملے گا. وردان کب ملے گا؟ جتنا یاد کریں گے اتنے وردان ملیں گے. ٹیچرس کو بھی یہی پاٹھ پڑھانا ہے, کھڑا ہو جانا چاہیے. کوئی بھی کچھ کہے گا نہیں, پھر بھی باپ کے بنے ہو تو پیٹ کے لیے تو تم کو مل ہی جاوے گا. تو ان بچوں کا بھی پیٹ پوشن ہوتا تو ہے نا. یہاں تو بےحد کا باپ آیا ہوا ہے. اس بےحد کے باپ کے جو بچے بنتے ہیں ان کے لیے پیٹ کی درکار, اتنے پیٹ کے لیے بدھی چلانے کی درکار نہیں ہے. یہ تو سامان سی بات ہے. کیڑے مکوڑے بھی اپنا پیٹ پوشن کر لیتے ہیں. باپ تو یہاں گارنٹی دیتے ہیں کہ میرے بچے جو میری سیوا میں لگنے والے ہیں, ساری دنیا میں بھوکمری پھیلتی رہے لیکن میرے بچے بھوک سے مرنے والے نہیں ہیں, گارنٹی ہے. تو باپ کے بنے ہو تو پیٹ کے لیے تو مل ہی سکتا ہے, شریر نرواہ کے لیے بہت ملے گا. بہت ملے گا مانا ایک پاؤ پیٹ کے لیے روٹی کی ضرورت ہے آدمی کو زندہ رہنے کے لیے. لیکن باپ کہتے ہیں تم کو بہت ملے گا, اس کے لیے تم چنتا نہ کرو. جیسے ویدانتی بچی ہے, اس نے امتحان دیا, اس میں ایک پوائنٹ تھی گیتا کا بھگوان کون. اس نے پرم پتا پرماتما لکھ دیا کہ گیتا کا بھگوان پرم پتا پرماتما شیو. بچی نے سچ بتایا تو ان کو نہ جاننے کے کارن ناپاس کر دیا.
उस समय तो नापास कर दिया नापास करने वालों ने, तो फिर लड़ना पड़े। किस बात पर लड़ना पड़े? बच्ची को इशारा दे दिया कि बच्ची तुमको इस बात पर लड़ना पड़ेगा। क्या बात लड़नी पड़ेगी, क्या लड़ाई होगी? कि गीता का भगवान निराकारी स्टेज में रहने वाला परमपिता परमात्मा शिव, या साकार में साकारी स्टेज में रहने वाला ब्रह्मा? दादा लेखराज का रूप भगवान है, भगवान कौन है त्रिमूर्ति में से? ब्रह्मा भगवान है, विष्णु भगवान है, या शंकर भगवान है जिसे शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है? शिव ब्रह्मा को मिला के एक नहीं कर दिया, इसको मिला के एक कर दिया, शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं, क्योंकि वही एकाकार होने वाली आत्माएं हैं 100%। शिव विष्णु को भी मिला के एक नहीं करते, उनका भी तादात में एकाकारी नहीं दिखाया गया, सिर्फ शिव शंकर को मिलाकर के एक कर दिया है। तो उनको न जानने के कारण नापास कर दिया, तो फिर ये लड़ाई लड़नी पड़े कि गीता का भगवान निराकार शिव है या साकारी स्टेज में रहने वाला कृष्ण है? कृष्ण माना ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा का रूप जो है वो भगवान का रूप है, जैसे ब्रह्मा कुमारियां मानती हैं। उनसे पूछा जाए सृष्टि पर भगवान का साकार रूप कौन, तो वो किसे बताएंगी? एवर लास्टिंग भगवान का, ऊंच से ऊंच भगवान का साकारी रूप इस सृष्टि पर कौन होता है, तो क्या जवाब देंगी? किसका चित्र सामने लाएंगी? ब्रह्मा का रूप सामने लाएंगी? बाबा कहते हैं तुम्हें इस बात पर लड़ना पड़े, मैंने तो ये सच सच लिखा था, गीता का भगवान है ही निराकार परमपिता परमात्मा, कृष्ण देहधारी तो हो न सके, देह में जिसकी बुद्धि चिपटी रहती है वो कृष्ण तो नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? जो देह और देह की दुनिया से परे रहने वाला है, रहता तो देह में है लेकिन बुद्धि से न्यारा है। परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की, तो उस समय ये लड़ाई न लड़ करके पढ़ाई छोड़ दी। समझा, ये तो डावली पढ़ाई है, हम गाढ़ली पढ़ाई पढ़ेंगे। नहीं तो देखो, ऐसी ऐसी बातों में तुम लड़ो तो नाम बाला हो जाएगा। बाबा इशारा दे रहे थे उसी समय, लेकिन इस स्थूल बात समझ ली, वो बात किसी की बुद्धि में नहीं आई कि वास्तव में वो लड़ाई क्या है और कैसे लड़ी जाएगी। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट कहे ये तो समझाती बहुत अच्छा है, उस बात को याद करने से ही पाप कट जाएंगे। किस बात को याद करने से? उस बाप को, उस क्यों कहा? ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ था, बोल रहा था ये वाणी, क्यों कहा उस? हाँ, क्योंकि आज ही भविष्य में बदलने वाला है, तुमको बाप को याद करते करते अपने शरीर को भी छोड़कर साइलेंस की दुनिया में जाना है, शरीर को छोड़कर। कि जैसे सन्यासी भूमिगत हो जाते हैं, समाधि ले लेते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं, ये देह का जो अभिमान है, देह का जो अटैचमेंट है, वो छोड़ करके, वो छोड़ने की बात है, स्थूल मरने की बात नहीं बताई शरीर से, वो तो सुसाइड करना हो जाता है, बुद्धि से त्याग करना है। याद करने से हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिल जाती है। याद करने से क्या होगा? आत्मा सूक्ष्म स्टेज को पकड़ती है, आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, अपने को ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा समझकर उस ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा जो कि साकार सृष्टि पर मुकर रथ में आता है, उस साकार में उस निराकार ज्योति बिंदु को याद करने से हमारी बुद्धि जो है वो सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? सूक्ष्म बनेगी, सूक्ष्म को याद करेंगे सूक्ष्म बुद्धि बनेगी। चोर डकैतों का संग करेंगे बुद्धि से तो चोर डकैत बनेंगे, जैसा संग बुद्धि का वैसे रंग लगेगा। तो याद करने से हेल्थ बनेगी, पहले काय की हेल्थ बनेगी, मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज की हेल्थ बनेगी, यह आत्मा मन बुद्धि रूपी जो बीज है उसका जो शरीर है वृक्ष उसकी हेल्थ पहले बनेगी। पहले तो बीज का सुधार किया जाता है, मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो अपनी जगह पर सॉलिड हो जाए, स्थिरियम हो जाए, वो हेल्थ मिल जाए। अगर मन बुद्धि रूपी आत्मा अपनी जगह स्थिर हो जाती है तो मनन चिंतन मंथन स्वतः ही चलने लग पड़ेगा। पहला मनन चिंतन मंथन चलता है कि मैं आत्मा कौन, इस तस्वीर रूपी रंगमंच पर 84 जन्म भोगने वाली आत्माओं में से मेरा कौन कौन सा पार्ट है, कहाँ कहाँ किस सृष्टि पर किस देश विशेष में किस राज्य विशेष में किस जन्म विशेष में मैंने क्या क्या पार्ट बजाया। आत्मा पार्टधारी है तो पार्टधारी को अपने पार्ट का पता न हो तो ऐसा पार्टधारी तो बेवकूफ समझा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको बेवकूफ से बुद्धिमान बनाने के लिए आया। ये पुरुषोत्तम संगम युग में ये सबसे विशेष युग है जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कैसे पुरुषोत्तम? त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों कालों में तुमने क्या क्या पाठ बजाया है वो सब तुम्हारी बुद्धि में कंप्यूटर की तरह क्लियर होने लग पड़ेगा। तो तुमको बाप को याद करते करते अपने शरीर को छोड़ देना है। याद करने से हेल्थ और ज्ञान रत्नों की वेल्थ भी मिलेगी। जिसके पास ये ज्ञान रत्न रूपी वेल्थ होगी संसार में उसके लिए स्थूल वेल्थ की कोई कमी नहीं रह जाएगी। भारत में 30 प्रॉपर्टी थी ना, ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियां बैठ करके समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। ये ऐसा करती है वो वैसा करती है। अभी तो ब्रह्मा कुमारियों की बहुत बदनामी चारों तरफ फैलाने लग पड़ते हैं। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो। क्या? अगर तुम्हारा कोई सामना करे तो बेकायदे लड़ाई नहीं लड़ो बाहुबल की, धन बल की। कैसे करो? कायदे से लड़ाई लड़ो, धर्म युद्ध करो। बड़े बड़े ऑफिसर के पास जाओ वो क्या करेंगे, तुमको पकड़ लेंगे क्या? ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगे, नहीं, पेट तो सिर्फ 8 आना चाहता है। अब की बात बताई है, जब बाबा जीवित थे उस समय की बात बताई, उस समय 2 रुपए में 1 किलो आटा मिलता था तो 8 आने में कितना मिला? 1 पाव आटा। 1 पाव आटा उपलों पर अगर बाटी बना ली जाए तो पेट भर जाएगा कि नहीं है? बल्कि बैठे बैठे काम करने वाले तो 1 पाव आटा खाते भी नहीं, और जब पेट भर जाएगा 1 पाव आटे में तो वो आदमी वर्षों जिंदा रह सकेगा या नहीं रह सकेगा कि भूख मर जाएगा? जिंदा रहेगा ना? आदमी के अंदर खुशी होती है तो कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसे भी शहरों में मजदूर देखे जाते हैं जिनको कई कई दिन तक मजदूरी नहीं मिलती। कुछ दिनों के लिए मजदूरी मिल जाती है और उसी मजदूरी से अपना पेट पालन करते रहते हैं। कंकड़ों पर सो जाते हैं, उनको अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद आए, सॉलिड बुद्धि रहे तो सादा भोजन भी बहुत अच्छा काम कर देता है हेल्थ बनाने के लिए। तो बोला पेट तो सिर्फ 8 आना चाहता है, जास्ती नहीं चाहता है। जास्ती फिर कौन चाहता है? उस समय की 8 आने की बात बताई ना, अभी उसको महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ता जोड़ दो, क्या करोगे? 10 रुपया किलो हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी 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 पावर आटा कितने में मिलेगा? 2.5 रुपए में मिलेगा ना, तो वही मल्टीप्लिकेशन कर दो। ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगे, केले से दही से भी रोटी खा सकते हो, आधी कटोरी दही मिल जाए या 1-2 केला मिल जाए रोटी खा सकते हो।
تو اسی حساب سے مہنگائی بھتا بڑھا دیا نا آپ کا، ابھی تو 2.5 روپیہ دے دیا نا آپ کو. ہاں دہی سے روٹی کھا سکتے ہو، منوش پیٹ کے لیے کتنے پاپ کرتے ہیں، پیٹ پورتی کرنے کے لیے کتنے پاپ کرتے ہیں. باپ آ کر سب کو پاپ آتما سے پنیا آتما بنائے رہے، اس میں پاپ کرنے با جھوٹ بولنے کی کوئی درکار نہیں ہے. تم کو تو 3/4 حصہ سستی پر سکھ ملتا ہے. کتنا ہے تو سکھ دکھ کی دنیا کا کھیل، لیکن تم کو 1/4 حصہ سکھ ملتا ہے اور 1/4 حصے میں تھوڑا دکھ ہے. تو تم تو اور دھرموں کے مقابلے بہت جاستی فائدے میں رہنے والے ہو. تو 1/4 سکھ، 1/4 حصہ اس دنیا میں تم دکھ بھوگتے ہو. تو اب باپ کہتے ہیں میٹھے میٹھے بچوں مجھے یاد کرو. مانے جب کلیوگی دنیا شروع ہوتی ہے، کلہ کلیش کی دنیا شروع ہوتی ہے، انیک دھرموں کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، اس دنیا میں انیک دیش اور انیک راجیوں کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، تب تم تھوڑے دکھی ہوتے ہو. اس میں بھی تم بچے نمبر وار ہو. سب ایک جیسا دکھ اور ایک جیسا دکھ سکھ تو بھوگنے والے ہیں نہیں. تو اب باپ کہتے ہیں میٹھے میٹھے بچوں مجھے یاد کرو تو تمہارے جنم جنمانتر کے پاس بھسم ہو جائیں گے. جتنے جنم جنمانتر تم نے پاپ کیے ہیں راجا بن کر کے، کہتے ہیں بھکتی مارگ میں تپ کر راج، راج کر نرکا. تپسیا کی ہے سنگم یوگ میں پرماتما باپ کو یاد کرنے کی، دیہ بھانو کو بھولنے کی، تو راجائی کی شوٹنگ ہو گئی. انیک جنموں کی راجائی کی پراپتی پرماتما باپ سے ہوتی ہے، یہ پڑھائی پڑھ کر کے. وہ اسکولوں میں تو ڈاکٹر بنیں گے، ماسٹر بنیں گے، وکیل بنیں گے، انجینئر بنیں گے، ایک جنم کے لیے بنیں گے. چلو دوسرے جنم میں بھی اس کے تھوڑے بہت سنسکار چلے جائیں گے، لیکن باپ سے تو ہمیں 84 جنموں کی پراپتی ہوتی ہے، انیک جنموں کی راجائی پراپت ہوتی ہے. یہ راجائی کا ورثہ کسی اسکول میں نہیں دیا جاتا، یہ باپ کا ہی اسکول ہے جس میں راجیوگ سکھا کر کے انیک جنموں کی راجائی دی جاتی. یہ ٹائٹل یہاں ملتا ہے، یہاں کی کیے ہوئے پرشارتھ کے آدھار پر آتما انیک جنموں کے لیے الگ الگ دیشوں میں الگ الگ پرکار کی راجائی پراپت کرتی ہے. وہ راجائی کا ورثہ ابھی باپ دے رہے ہیں پڑھائی پڑھا کر. تو اب اور کوئی اپائے نہیں ہے سوائے باپ کو یاد کرنے کے. تو بھکتی کرنا مانا درگتی، کیونکہ بھکتی راون سے آتی ہے. بھکتی مانا بھاگنا، ایک گرو کیا پھر دوسرے کے پاس بھاگے، تیسرا گرو کیا، چوتھا گرو کیا، ایک تیرتھ میں گئے دوسرے تیرتھ میں گئے، ایک مندر میں گئے دوسرے مندر میں گئے، ایک دھرم میں رہے پھر دوسرا دھرم کنورٹ کر لیا، دوسرے دھرم میں چلے گئے. تو بھکتی میں تو بھاگنا بھاگنا کرنا چلتا رہتا ہے، وہ ہے اندھ شردھا اندھ وشواس. یہاں تو باپ کہتے ہیں میں ایک ہی بار آتا ہوں اور ایک ہی بار میں آ کر کے تم کو سب کچھ دے کر کے جاتا ہوں، تو دوسرا گرو کرنے کی درکار نہیں ہے. ایسے نہیں یہ گرو مر جاوے گا تو تم کوئی دوسرا گرو کر لیں گے. سوچتے ہو کوئی کہ برہما مر گیا تو کمار کا دادی بیٹھ گئی، ہم ان کو گرو بنا لیں گے، اب وہ ہمیں جیسے چلائیں گے ویسے ہمیں چلیں گے. نہیں، یہ گرو تو ایک ہی بار آتا ہے اور تمہاری سدگتی کر کے ہی واپس جاتا ہے. میں تم بچوں کو ساتھ لے کر کے جاؤں گا. پورے میں کیا بولا، نینوں پر بٹھا کر لے جاؤں گا. ایسے تم بنو تو تم کو کوئی بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی، یاد کرنے کی بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی، باپ کی اسنیہ کی درشتی کے جھولے میں جھولتے ہوئے جائیں گے. نینوں پہ بٹھانے کا مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی استھول نینوں پہ بٹھائے لیں گے، یہ تو تیسرے نیتر کی درشتی ہے. تو اس بھکتی میں تو ہے درگتی، کیونکہ بھکتی راون سے آتی ہے، انیکوں کی مت پر چلنا پڑتا ہے، وہ ہے اندھشردھا اندھ وشواس. یہاں تو تم گیان میں چلتے ہو، گیان ایک سے آتا ہے اور بھکتی
अनेकों से आती है, उस भक्ति में धक्के बहुत खाते हैं। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। वहां तो तुमको बाप, यहां तो तुमको बाप मिला है, तुमको कोई भी प्रकार का चित्र रखने की दरकार नहीं है। क्या था, कोई कहे हमें चित्र दे दो, हमें फोटो दे दो, जैसे ब्रह्मा के फोटो रखते हैं, दादी की फोटो जेब में रखते हैं। बाप कहते हैं यहां कोई भी तुमको चित्र रखने की दरकार नहीं है, चित्र कहाँ रखना है, रखना भी है तो बुद्ध रूपी पॉकेट में सदैव बाप का चित्र रखो, ये त्रिमूर्ति बाप है। क्या ये बाप की एक मूर्ति नहीं है, कितनी मूर्तियां हैं, तीन मूर्तियां हैं। तो ये त्रिमूर्ति बाप, इसका चित्र रखने की दरकार नहीं, एक का चित्र रखेंगे या तीन तीन का चित्र रखेंगे या एक में ही तीनों समय हुए हैं उनको रखेंगे। बाप को तो तुम जानते ही हो, वो हमारा बेहद का बाप है, बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। कब दे रहे हैं, इसी जन्म में दे रहे हैं या अगले जन्म में देंगे, दे रहे हैं बस राइट। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार कब साबित होगा, स्वर्गीय दुनिया तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। हेवनली गॉड फादर कहा जाता है तो हेवन का वर्षा यही देगा या अगले जन्म में देगा। अगले जन्म में तो हम दूसरे के बच्चे बन जाएंगे, दूसरे से बर्थ लेंगे, तो बर्थ राइट इस जन्म में लेना है या अगले जन्म में लेना है। इसी जन्म में हम पढ़ाई पढ़ते हैं और इसी जन्म में हमें सुख शांति का वर्षा लेना है, इसी जन्म में हमको राजयोग सीख करके ऊंचे से ऊंचा राजा विश्व का मालिक बनना है, जिसके लिए यादगार है विश्वनाथ की, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, सारे विश्व का नाथ एक ही गाया जाता है। हिटलर नेपोलियन भले सारी दुनिया में उन्होंने राज्य करने के लिए कितनी भी महत्वाकांक्षा की, लेकिन सारी दुनिया में राज्य नहीं कर सके, ये बाहुबल से नहीं कर सकते। तुम बच्चे योग बल से ही परमात्मा से विश्व की बात ही प्राप्त करते हो, तो तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात भी नहीं है क्या, बाप से वर्षा लेने के लिए कोई भी शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है। शास्त्र माना ग्रंथ शास्त्र किसे कहते हैं, शास शब्द से बना है शास्त्र, शास्त्री, शास माना शासन करने का विधान, शास्त्र। सबसे ऊंचे से ऊंचा शास्त्र बाबा कौन सा बताते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, गीता माना महिमा का गीत। किसकी महिमा, जड़ पत्तों की महिमा, जड़ कागज के पत्तों का जो ग्रंथ बनाया उसकी महिमा। महिमा तो कर्म करने वाले की जाती है, जो अच्छे कर्म करता है उसकी महिमा की जाती है। सारी दुनिया औरों की महिमा करती है और बाप आकर किसकी महिमा करते हैं, सारी मुरलियां भरी पड़ी हैं किसकी महिमा से, चैतन्य गीता माता की महिमा से। तो तुमको और कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। कौन सा शास्त्र, गीता, जड़ गीता, ये पत्तों की गीता, सन्मुख गीता पढ़ेंगे माने गीता माता को पढ़ेंगे, गीता माता को भी पढ़ने की दरकार तुम्हारी नहीं है, तुमको गीता माता पढ़ने की दरकार नहीं है, समझो। कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है, न गीता न कुरान न बाइबल, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बस हम अभी आए के आए, तुमको देखो घर छोड़े कितना समय हुआ है, कितना टाइम हुआ, शांति की दुनिया छोड़े तुमको कितना टाइम हो गया, 5000 वर्ष बीत गए जब तुम शांति की दुनिया में थे, जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए थे, अभ्यास पक्का हो गया था, अपने को शांत अनुभव करते थे, सारी दुनिया में कयामत बरपा हो रही थी और तुम बच्चे माउंट आबू में शांत स्थिति में बैठे हुए थे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस दुखधाम को अब तुम भूल जाओ, सुखधाम को छोड़े 63 जन्म हुए हैं और दुखधाम को छोड़े, शांति धाम को छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। बाप कहते हैं शांति धाम सुखधाम में चलो, चलो कोई स्थूल चीज है, स्थूल स्थान है जहां चले कैसे चले, मन बुद्धि से, मन बुद्धि से भी कैसे चलेंगे, कहीं पहुंचने की बात है स्थूल में क्या, नहीं, अपनी ऐसी स्टेज बनानी है मन बुद्धि की कि हम कैसी भी स्थिति परिस्थिति, कैसे भी वाइब्रेशन हो, कैसी भी दुनिया हो, कैसे भी व्यक्तियों के बीच में हो, हम अपने को शांत स्टेज में महसूस करें। ऐसे नहीं कि हमको शांति चाहिए, चाहिए का मतलब शांत है या अशांत है, अशांत है। तो बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम में चलो, इस दुख धाम को भूल जाओ, शांति धाम सुख धाम को याद करो। और कोई डिफिकल्ट बात नहीं बताते हैं, कोई बहुत कड़ा पुरुषार्थ नहीं है, इसका नाम ही है सहज राजयोग। कैसा राजयोग, सहज से सहज है, अगर एक ही मत पर चले तो कठिन कब हो जाता है, जब अनेकों की मत पर चलते हैं तो कठिन हो जाता है। शिव बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ तो नहीं है, है? शिव बाबा किसके लिखे हुए शास्त्र पढ़ेगा, जो भी धर्म पिताएं आते हैं क्या वो शास्त्र पढ़ करके सुनाते हैं क्या, कि ओरली सुनाते हैं, ओरली सुनाते हैं। तो दुनिया के इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक जैसे छोटे छोटे जो धर्म पिताएं हुए उन्होंने भी ओरली सुनाया, तो उन बापों का भी जो बाप इस सृष्टि पर आता है सुप्रीम सोल, तो वो क्या शास्त्र पढ़ करके सुनाता होगा, है नहीं। तो बाप अभी आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, आया हुआ है, तो वो शास्त्र पढ़ के सुनाता है ये ओरली सुनाता है, वो शास्त्र नहीं पढ़ता वो ओरली सुनाता है। अच्छा है, हाँ ये तो बात है, शास्त्रों में ब्रह्मा के हाथों में शास्त्र दिखाते हैं और ब्रह्मा को भगवान मानते नहीं, ब्रह्मा की पूजा करते नहीं, ब्रह्मा के मंदिर बनाते नहीं, तो ब्रह्मा के हाथों में शास्त्र है और उन शास्त्रों का क्लेरिफिकेशन देने वाली सोल वो शास्त्र नहीं पढ़ती। क्लेरिफिकेशन देने वाला कौन है, सुप्रीम सोल बाप, वो उसको व्याख्या करके टीचर बन करके पढ़ाई पढ़ाता है, वो हाथ में नहीं पकड़ता, कौन पकड़ता है, ब्रह्मा। माना क्या हुआ कि शंकर का जो स्वरूप दिखाया गया है भक्ति मार्ग में, उसमें जो चंद्रमा दिखाया जाता है अधूरा, वो है ब्रह्मा की निशानी, बड़ी माँ ब्रह्मा, जिसने माँ के रूप में बच्चों की दूध से पालना की, प्यार दिया है हमेशा, कभी भी बच्चों को टेढ़ी आंख से देखा नहीं। कोई बच्चा कह नहीं सकता कि बाबा ने हमको दुख दिया कोई बात से या कोई किसी प्रकार की तुरस आंख दिखा करके, नहीं। बाप ब्रह्मा के रूप में, बड़ी माँ के रूप में जब इस सृष्टि पर आया तो उसने सुख ही सुख दिया बच्चों को, सुख रूपी दूध पिलाया। लेकिन वही बाप ब्रह्मा का जब रूप छोड़ता है तो ब्रह्मा रूपी चंद्रमा और वो तीसरा नेत्र रूपी त्रिनेत्री बाप शिव, वो कोई और ही ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करता है, तो एक ही शरीर में तीन आत्माएं होती, इसलिए उनको शंकर कहा जाता है। मिक्स पार्ट है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा अभी कौन बोलती है, कौन सी आत्मा बोल रही है। कभी शिव की आत्मा अपना पार्ट बजाती है, कभी ब्रह्मा की सोल अपना पार्ट बजाती है, और शंकर का तो इतना पार्ट ही नहीं है, तो याद को पार्ट थोड़ा ही कहा जाएगा। याद में बैठना कोई कर्मेंद्रियों की हलन चलन रूपी पार्ट हो सकता है, नहीं, लेकिन फिर भी इतना पार्ट नहीं है, माने कुछ न कुछ पार्ट है जरूर। तो ये शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, यह पढ़ा हुआ है, यह माना कौन, ब्रह्मा की तरह। तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं, बुद्धि में क्या रखना है, हमको ब्रह्मा जो अधूरा चंद्रमा शंकर के मस्तक पर दिखाया जाता है वो पढ़ाने वाला नहीं है, पढ़ाने वाला कौन है, शिव बाबा पढ़ाने वाला है। यह ब्रह्मा भी पढ़ाए तो सकते हैं, क्या ये नहीं कहा कि ये ब्रह्मा पढ़ाते हैं या पढ़ाने वाले हैं, लेकिन पढ़ाए सकते हैं। परंतु तुम सदैव ये समझो कि ये शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। अगर वो पढ़ाए भी मान लो तो तुम क्या समझो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, बाप पढ़ाते हैं कि सभी उनको याद करने से विकल्प विनाश होंगे। अगर तुम ये बुद्धि में समझोगे कि हमको ब्रह्मा सब पढ़ाते हैं तो विकल्प विनाश नहीं होंगे। क्यों? पाप कर्म विनाश करने के लिए जरूरी है कि हम ऐसे को याद करें जिसके ऊपर पाप का कोई लेप छेप न लग सके। इसलिए मुरली में बोला है मैं ऐसे के द्वारा विनाश कराता हूँ जिस पर कोई पाप न लगे। तो ऐसा रूप कौन सा है जिसके ऊपर कोई पाप न लगे? सारी दुनिया का संहार कर दे, जैसे गीता में लिखा हुआ है, सारी दुनिया का संहार कर दे अगर स्वरूप निष्ठ है तो, लेकिन उसके ऊपर पाप नहीं ले सकता। तो ऐसा रूप एक ही गाया हुआ है जिसको विनाशकारी का टाइटल दिया गया शंकर द्वारा, विनाश। तो उनको याद करने से विकर्ण विनाश होंगे। किनको याद करने से? शंकर को याद करने से। वो तो फिर मिक्स पार्ट हो गया। उसमें भी किसको याद करना है? उसमें भी शिव सुप्रीम सोल, जो पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर है, जो वर्षा देने वाला बाप है, जो सदगति देने वाला सदगुरु है, उसको याद करना। और बीच में ये भी है। क्या कहा? किसके किसके बीच में ये है? हैं? किसके किसके बीच में है ये? यह माना ब्रह्मा किसके किसके बीच में है? शिव और शंकर के बीच में, माना राम वाली सोल और शिव सुप्रीम सोल, इन दोनों के बीच में कौन है? यह ब्रह्मा भी है। ब्रह्मा कहो, प्रैक्टिकल उसका रूप जगदम्बा कहो। अब बाप कहते हैं टाइम बहुत थोड़ा है, क्या है? हाँ, टाइम बहुत थोड़ा है, जास्ती नहीं है। ऐसा ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो। नहीं, स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि जो नसीब में होगा तो पढ़ाई पढ़ लेंगे, पद पा लेंगे। यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ जन्म जन्मांतर के लिए नौकरी चाकरी करते रहे। क्या कहा? उस दुनिया में भी ऐसे होता है, चाहे जगजीवन राम चमार हो, लेकिन अगर पढ़ाई पढ़ा हुआ है तो क्या बन गए? तो मिनिस्टर बन गए। तो ये नहीं देखा जाता है कि ये कौन है, लेकिन पढ़ाई देखी जाती है।
चाहे हरिजन है, नीति जाति का है, चाहे लूला लंगड़ा अंडा कोड़ी है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ाई पढ़ने वाला है तो वो उच्च पद। आजकल तो जो हैंडीकैप होते हैं उनको और ही बढ़ावा दिया जाता है। तो सारा मदार किस बात पर हुआ? पढ़ाई के ऊपर मदार। तो अगर यहाँ पढ़ाई नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया, तो जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे, फिर राजाई मिल नहीं सकेगी। सुख राजाई में होता है या प्रजा को सुख होता है? राजाओं को सुख होता है, आधा में जाम आधा में रैया। प्रजा आधी संपत्ति में पलती है और राज परिवार आधी संपत्ति में चलता है, तो ज्यादा सुख किसको हुआ? अरे परमात्मा से जो प्राप्ति होती है उसमें तो सुख होगा ही होगा ना। ये परमात्मा का व्यवस्था है, ठोकर नहीं मारनी चाहिए। परमात्मा का व्यवस्था क्या है? जन्म जन्मांतर की राजाई। तो जो नौ पर चाकर बनते रहेंगे, करके पिछाड़ी में ताज बदलू ले लेंगे, पिछाड़ी में उनको थोड़ा मतलब मिल जाएगा। तो वो भी त्रेता क्या सतयुग में जो आठ नारायण बनेंगे, वहां कोई ये बात नहीं कि आखिरी नारायण जो है वो महाराजा नहीं बनेगा। सतयुग में तो महाराजा ही बनेंगे, लेकिन त्रेता में राजाएं भी बनते हैं और अंत में जाकर छोटे मोटे प्रिंस प्रिंसेस भी ढेर के ढेर बन जाते हैं। जो आज के जन्मों में राजाई लेते हैं वो सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। तो ये सत्य सत्यनारायण की कथा है, जो तुम बच्चों को औरों को सुनानी है। ये सत्यनारायण कैसे बने? घर घर में इनकी पूजा, इनकी कथा किसी लिए होती है? कैसे ये विश्व के मालिक बने और पहले क्या थे और फिर बाद में क्या बने? कैसे ये जयगर टू प्रिंस बनते? जयगर टू प्रिंस बने उसी जन्म में बैगर और उसी जन्म में बैगर से प्रिंस बन जाने, जैसे बाबर उसी जन्म में एक छोटा सा सिपाही और उसी जन्म में क्या बन गया? भारत का सम्राट बन गया। तो ये करिश्मा कहाँ से आता है आत्मा में? एक बाप की पढ़ाई से ये करिश्मा आता है। ओके।